ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, चैप्टर 5। अलौकिक माता पिता द्वारा सुख घनेरे, परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाएं। अब सभी ज्ञान अभिलाषी पवित्रता प्रेमी माताएं, कन्याएं और भाई शांत वातावरण में पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में लग गए। उन्हें अपने जीवन में अपार आत्मिक सुख का अनुभव हुआ। अब उनका मनुआ यह गीत गाता होगा, आज हमें सब बेहद भाता, आज हमारा है मन हर्षाता, ज्ञान से त्रिलोकी देखो अति सुंदर, ज्ञान से देखी लीला अति सुंदर, क्या आनंद है आता, आहा क्या आनंद है आता, आहा आज मुझे है बेहद भाता। इस प्रकार अब पहले से भी अधिक शांतिपूर्वक अलौकिक कार्य चलने लगा। लोक लाज की परीक्षा को पार करने तथा कठिनाइयों को सहन करने के बाद अब आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों में खूब शिक्षा मिलने लगी। यूं तो इस पढ़ाई का वर्णन करने बैठे तो बहुत विस्तार होने पर भी इसका उल्लेख करना कठिन होगा, परंतु सार रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं संबंधियों ही के अत्याचार के परिणाम स्वरूप हमारे देह के संबंधों का संन्यास हो जाने के बाद अब बाबा ने हमें अन्य अन्य प्रकार के उच्च त्याग के लिए तैयार किया और हमारे मन वचन कर्म को पूर्णतः निर्विकार बनाने के लिए नित्य ज्ञान के अनमोल रहस्य समझाए। गहन पढ़ाई शुरू। बाबा ने हमें पहला पाठ यह पढ़ाया कि आप सभी ने मरजीवा जन्म लिया है, आपके लौकिक संबंधियों ने आपसे नाता तोड़ दिया है, गोया उनके घर से आप मर चुके हो। अब जैसे कोई मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म के मित्र संबंधियों तथा जीवन वृतांतों की याद नहीं रहती, वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहाँ से जीते जी मर चुके हैं और अब आपने यहाँ नया अर्थात मर जीवा जन्म लिया है, तो आपको भी अब पुराने संबंधों तथा अपने पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परमपिता परमात्मा की गोद ली है, अर्थात आप उनके बच्चे बने हैं, आप द्विज अर्थात ब्राह्मण बने हैं, आप अब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, अतः अब आप बच्चों का बुद्धि योग एक परमपिता परमात्मा ही से होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद आती रहेगी और मन में ईश्वरीय नाते की विस्मृति होती रहेगी तो आप ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकोगे, अर्थात आप स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। भले ही कई एक पूरे परिवारों ने भी इस ईश्वरीय यज्ञ में आत्मसमर्पण किया था, परंतु बाबा ने समझाया कि अब आप आत्मिक नाते से व्यवहार करो, अब आप सभी प्रभु वत्स अथवा यज्ञ वत्स हैं, अतः यहाँ जो माता पिता हैं उन्हें अपने लौकिक बच्चों की यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खाना और वस्त्र आदि ठीक मिल रहे हैं या नहीं। सब की संभाल करना यज्ञ माता और यज्ञ पिता का कर्तव्य है और सभी का संबंध उन्हीं से होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नियम के अनुसार चलने से यज्ञवत्सों का रहा सहा मोह, बची खुची ममता अथवा दैहिक संबंधियों से यथाशेष लगाव भी जाता रहा। अब सभी का परस्पर आत्मा आत्मा भाई भाई का अथवा भाई बहन का ही पवित्र और शुद्ध स्नेहयुक्त नाता रहा। बाकी सभी नाते परम पिता परमात्मा से ही जुट गए और वे यज्ञ माता तथा यज्ञ पिता ही के आदेश निर्देश और ईश्वरीय नियम के अनुसार ही चलने लगे। दूसरी ओर बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों के विषय के चिंतन और उनमें आसक्ति के त्याग की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्चे अब आप वत्सों को कर्मेंद्रियों पर भी काबू पाना है। पुराने संस्कारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे, उन्हें तो आप योग बल तथा ज्ञान बल द्वारा शुद्ध करते ही जाएंगे, परंतु अब से लेकर आपकी कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। यदि कर्मेंद्रियों द्वारा आपने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया तो आपको अब उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे और अज्ञानवश ही वह कर्म कर बैठते थे, जबकि अब आपको स्वरूप का, स्वधर्म का, लक्ष्य का और पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चय करने के बाद तथा ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है तो उसे कई गुना दंड मिलना निश्चित है। इस प्रकार आँखों द्वारा बुरी दृष्टि से न देखना, मुख द्वारा बुरे बोल न बोलना, कान द्वारा बुरे वचन न सुनना, परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना, सदा हर्षित मुख और प्रसन्न वदन रहना, यह सब शिक्षा भी बाबा ने हमें प्रैक्टिकल जीवन का आदर्श सामने देकर स्पष्ट रूप से दी। बाबा ने राज कुलोचित व्यवहार एवं शिष्ट चलन के लिए भी बहुत ही मधुर एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षा दी। निद्रा अवस्था को सतोगुणी बनाने पर ध्यान, यहाँ तक कि बाबा ने निद्रा अवस्था को भी सतोगुणी बनाने की युक्तियाँ समझाई। उन्होंने यह नियम निर्धारित कर दिया कि सभी वत्स कुछ समय ईश्वरीय याद में बैठने के पश्चात ही सोएं। कई बार तो बाबा 2 बजे रात गए वहाँ आते जहाँ यज्ञ वत्स सोए पड़े होते और अपने साथ आए वत्सों को सोए हुए वत्सों के चेहरे की ओर संकेत करके कहते कि देखो, उनके चेहरे से ही ऐसा लगता है कि वे ईश्वरीय याद का अभ्यास करते सतोगुणी नींद सोए हैं, मानो के सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। परंतु इन दूसरे वत्सों को देखो, वे तमोगुणी निंद्रा में अचेत सी अवस्था में सोए पड़े हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियों के विषयों और पदार्थों में आसक्ति के त्याग तथा कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्मों के त्याग का पाठ प्रैक्टिकल जीवन में पक्का कराते कराते कुछ ही वर्षों में बाबा ने मानसिक शुद्धि के लिए बहुत ही शिक्षा दी। बाबा कहते, बच्चे यदि संकल्प शुद्धि नहीं होगी तो कर्मेंद्रियों से भी बुरे कर्म हो ही जाएंगे, इसलिए अब मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो और यह शुद्धि उतनी उतनी प्राप्त होगी जितना जितना कि आप आत्मस्मृति में तथा ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे। यदि आने वाले महाविनाश से पहले आपने मानसिक शुद्धि प्राप्त नहीं की तो आपको सतयुगी सृष्टि में जीवन मुक्ति देव पद नहीं मिलेगा, बल्कि आपको त्रेतायुगी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ेगा। अतः सावधान हो जाओ, वरना आपका बहुत घाटा हो जाएगा। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान रूपी स्वदर्शन चक्र धारण करने से आपके मन के आसुरी संकल्प निर्मूल होते जाएंगे। दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान। बाबा ने अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता आदि आदि दिव्य गुणों की धारणा के लिए भी ज्ञान के बहुत गुहे रहस्य समझाए। उससे यज्ञवत्सों के जीवन में दिव्यता और हर्ष दिनों दिन बढ़ते गए। यज्ञ माता और यज्ञ पिता द्वारा अलौकिक शिक्षा और पालन। बाबा ने तथा ओम राधे जी ने, जिन्हें कि हम यज्ञ माता और यज्ञ पिता के अलौकिक नाम से भी याद करते थे, यज्ञवत्सों को खान पान आदि आदि की पूरी सुविधाएं दी। यज्ञ वत्सों ने ऐसा सुख अनुभव किया और उन्हें यज्ञ माता यज्ञ पिता से वह स्नेह मिला कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी हेय लगा और उन्हें इस संसार की तथा दैहिक संबंधों की भी सुध बुध भूल गई। आहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में यह जो धर्म के मात पिता से सभी को निष्काम शुद्ध और आत्मिक प्यार मिला, उसका वर्णन करना असंभव है। ये करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा पालना लेने का यही एक सुनहरी अवसर सारे कल्प में आत्माओं को मिलता है। जिन्होंने उसका अनुभव किया है वे गोप गोपियां ही इसे जानती हैं और नहीं जानता कोई। इस राज ऋषि कुल में बाबा ने न केवल पिता का, शिक्षक का और धर्म ज्ञान दाता का पाठ बजाया, बल्कि वे वत्सों को अति प्रेम से सागर के तट पर घूमने भी ले जाते, उन्हें पिकनिक भी कराते, उनके लिए खेल कूद की सब व्यवस्था का ख्याल रखते। उनमें से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता तो उसकी चिकित्सा तथा सेवा के लिए सब तरह का समुचित प्रबंध बनाए रखते। किसी भी वस्तु की कमी न थी। कितने ही अच्छे किसी के लौकिक माता पिता हो, ऐसा सुख, ऐसा लाड़ प्यार, ऐसा लालन पालन कोई भी कभी नहीं दे सकता। बाबा ने ही माता का भी पाठ बजाया और भक्ति मार्ग में यह जो सुभिक्षा भगवान के प्रति व्यक्त की जाती है कि हे प्रभु, तुम ही मात, तुम ही पिता हो और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे हैं, इसका प्रैक्टिकल अनुभव यज्ञवत्सों ने इस ज्ञान मार्ग में किया, जबकि परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजा पिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके मात पिता के रूप में आत्माओं को ऐसा लाड प्यार दिया जिसका ज्ञानवत्सों के मन चित्त में कभी संकल्प ही न था। अतः हर्ष से उनका मन कह उठता, सुख की आई घड़ी, जब से मैं ओम मंडली गई, प्रभु से रीति जुटी सखीरी मेरे सुख की आई घड़ी। मनवश करने मंत्र मिला मुझे, लगी न एक घड़ी, दिव्य दृष्टि मिली मोहे क्षण में, वैकुंठ आन खड़ी। मैं कृष्ण से रास करी सखीरी, हर्ष शोक की आग उफाणी, सुख पद समाधि चढ़ी। सुख की आई घड़ी, मुझे लगी न एक घड़ी सखीरी, ज्ञान अमृत बिन जिया घबराए, बिछड़ो न एक घड़ी। मैं तो अप्रभु के हाथ विकाणी रे, तन मन सुत बिसरी सुख की आई घड़ी। मैं तो जीते जी मरी, जब से ओम मंडली गई। राजसियु अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अब इस ज्ञान यज्ञ में जिसे कि राजसियु अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता था, मुख्य रूप से ओम राधे जी की संभाल जी ही संभाल करती थी। यूं थी तो वह एक बाल ब्रह्मचारिणी अथवा एक कन्या ही, परंतु यज्ञ पिता अथवा पिताश्री ने उन्हें ही विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था, क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञवत्सों में से सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ही ऐसा लगता था कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनके ही सजीव रूप में आकर अथवा मूर्त रूप हुए हैं। ज्ञान वीणा वादन में वह सर्वोपरि थी, उनकी कोई उपमा नहीं थी, इसलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञवत्स, चाहे वे शारीरिक आयु में कितने ही बड़े क्यों ना हों, सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माँ भी उन्हें माँ शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वह जगत की अम्बा थी और अब तो सभी का उनसे आत्मिक नाता अथवा ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए थी तो वह भी एक वत्स अर्थात पुत्री ही, परंतु बाबा भी उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वह इस शिव शक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो कि शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्रों और शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी। जैसे ओम राधे जी को सभी वत्स मम्मा माँ मातेश्वरी या यज्ञ माता कहकर बुलाते थे, वैसे ही ओम बाबा को वे सभी बाबा पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक पत्नी और बहन भी उन्हें अब अलौकिक नाते से बाबा ही कहती थी और बाबा भी उन्हें बेटी अथवा बच्ची कहकर बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा पिताश्री के मधुर नाम से संबोधित करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि दादा अथवा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनके मुख द्वारा वे परमपिता शिव शूद्रों अर्थात विकारी नर नारियों को मर जीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण पावन अथवा द्विज बना रहे हैं और सतयुगी पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती हैं, जिनका कि ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञान निष्ठ पुत्री के रूप में गायन है। इसका नाम राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पहले वाला राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञान अग्नि में स्वाहा करके सतयुगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यज्ञ कराया था, अब फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद के योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की थी। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ही प्रतिदिन परम धाम से ब्रह्मा तन में आ आकर उनके मुख का आधार अथवा उधार लेकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ज्ञान यज्ञ देते हैं और सहज याग राज योग सिखाते रहे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परमपिता के उस गुप्त साधारण वेश तन में होने के कारण लोग भ्रांतिवश पिताश्री अर्थात ब्रह्मा बाबा को ही इस यज्ञ का स्थापक तथा ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों का गुरु मानते रहे और अज्ञानतावश उन पर गाली रूपी अग के फूल चढ़ाते रहे हैं। परंतु परमपिता शिव प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी पतितों को पावन करने का कर्तव्य यथापूर्व अथक रीति से करते रहे। ज्ञान वत्सों को आत्मकल्याण और विश्व सेवा के लिए शिक्षा। इस प्रकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञान वत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वकीलों डॉक्टरों व्यापारियों अध्यापकों गृहस्थियों साधुओं हरेक को यह सर्वोत्तम ईश्वरीय ज्ञान किस रीति से समझाकर उनका कल्याण करना है उसके लिए वे यज्ञवत्सों को शिक्षा देते रहे हैं। दुनिया की निगाहों और आवाज़ों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भी भर रहे थे। ओम शांति।